करता है कार्यक्रम आज सवेरे। इन्वेस्टमेंट, निवेश आज के दौर का एक ऐसा जरूरी घटक जिसे हम अक्सर तलाशते रहते हैं कि कहां हम निवेश करें कि ज्यादा से ज्यादा लाभ के साथ वो हम तक पहुंचे। मुझे समझ नहीं आता कि पैसे की इन्वेस्टमेंट और उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट पर जो हम इतना फोकस करते हैं, अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी की इन्वेस्टमेंट पर हम वही ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम इन्वेस्टमेंट दूसरों को सम्मान देना है। एक ऐसा निवेश जिसे हम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो कई गुना ज्यादा होकर हमारे पास लाभ के रूप में वापस लौटेगा। तो आइए क्यों ना आज ही से आगाज करें हमसे मिलने वाले हर शख्स को सम्मान देने का, ताकि बिना मेहनत या बिना कोशिश के बदले में हमें भी वही सम्मान मिले जिसकी ख्वाहिश हर इंसान को होती है। शुरुआत मैं ही करती हूँ बेहद सम्मान और बेहद रिस्पेक्ट से अपने श्रोताओं और अपनी को होस्ट रेणु कटारिया का आकाशवाणी गोल्ड के न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में स्वागत करते हुए। गुड मॉर्निंग रेणु।
गुड मॉर्निंग नईम, एंड थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। एंड वी आर ऑल्सो वेलकमिंग ऑल आर लवली लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। डियर लिसनर्स एंड नईम, लेट्स बिगिन आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, इन विच इन द नेक्स्ट half an hour we shall bring to you the latest in national and international news, metro city updates, and a very special program Kaleidoscope, as well as some historical information related to this day, that is the 21st of February. So let's begin with the news headlines.
जी मैं शुरुआत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरियाकोस मिस्टोतिस का इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें तमाम देशों के मंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों, सैन्य कमांडरों, उद्योग जगत के प्रमुखों, प्रौद्योगिकी और अकादमिक क्षेत्र की हस्तियों के साथ साथ पत्रकार और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। रायसीना संवाद के संस्करण का विषय है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। 3 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान विश्व की नीति निर्माता और चिंतक 6 अलग अलग विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागी इस दौरान चर्चाओं में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को विभिन्न डिजिटल मंचों पर विश्व भर में देखा जा सकेगा।
And following on the same story, the Minister of External Affairs said that India-Greece relations have been elevated to strategic partnership during Prime Minister's visit to Greece in August last year. Name?
Jee.
The relations are based on shared cultural values, commitment to foster economic growth, collaboration in the fields of security and defence, shipping, maritime, and marked by convergence on regional and global issues.
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर आंदोलनकारी किसानों द्वारा सरकार का प्रस्ताव खारिज कर अपना विरोध जारी रखने के बीच सरकार ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मुद्दे का मिलकर शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं के साथ उनकी चर्चा में कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया, पर सरकार को पता चला है कि किसान इनसे संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए। हाल में किसान नेताओं से बातचीत में केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल तक दलहन, मक्का और कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे खारिज कर दिया है।
मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉ वीरेंद्र कुमार विल इनॉग्रेट सेवरल न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज इन न्यू दिल्ली टुडे। The ministry said that these initiatives underscore the government's unwavering commitment to fostering inclusivity and empowerment for persons with disabilities. Some of the key facilities include Composite Regional Centre or CRC in Davangere, Karnataka, Gorakhpur and Rajnandgaon, Vocational Training Centre in Cuttack and hostels of CRC Patna and CRC Guwahati.
आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना आरंभ करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य 20,000 से अधिक जनजातीय लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्वास्थ्य जांच देशभर के 14 राज्यों में 55 चुनिंदा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में होगी। आयुष मंत्रालय के अनुसार एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, कुपोषण और टीबी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली की आदत अपनाने को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जाएंगे। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से चलाया जाएगा।
And moving on to sports, the 17th edition of the Indian Premier League or IPL will begin from March 22nd. IPL Chairman Arun Dhumal said that the schedule of the first 10 days will be announced initially, while the roster for the remaining games will be announced once the dates for the general elections are made official. The dates for the Lok Sabha polls are expected to be announced in early March. Mr. Dhumal made it clear that the IPL matches will not be played overseas. He said they are waiting for Lok Sabha election dates to decide the venues of the matches. The T20 World Cup will begin on June 1st. It is expected that the IPL will be concluded latest by the end of May.
और आज सवेरे कार्यक्रम में आप प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरों में चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ रेनू शुरुआत कर रही हैं।
यस, थैंक यू नेम। Notifications for Agnivir, both female and male categories, have been published on the website of the Indian Army. Applications are invited from those interested in 11 districts of Tamil Nadu. This recruitment will be for a variety of positions including Agnivir General Duty, Technical, Agnivir Office Assistant or Storekeeper Technical Officer and Agnivir General Duty Women. The applications online will close on 22nd March. Admit cards for online written exams will be issued online. Candidates are advised to keep checking the website with their registered email IDs. And another news from Chennai Metro. The 12th edition of the Chennai International Short Film Festival will be held from February 22nd to 25th at Satyam Inox Theatre in Chennai. Short films from all over the world will be screened, and this would also include presentations and screenings by students from various colleges from across Chennai. Social issues, global influence on short filmmaking, experimental learning through short filmmaking, visual approach and dramatic storytelling will be screened during the festival. Moving on to Bengaluru, the Center for Cellular and Molecular Platforms, India's foremost biotech research and innovation hub, has launched the Life Science Entrepreneurship Development Program, or LIFED. It seeks to promote life sciences research, innovation and entrepreneurship in the Indian academic community, with Bengaluru serving as the first point of focus. LIFED will provide the country's scientific community with knowledge and access to cutting-edge research tools, as well as instill a strong innovation-driven mindset to turn bench discoveries into solutions that address social concerns. This entrepreneurial know-how can be extremely useful in boosting indigenous innovation and science-led entrepreneurship in a country like India. This program intends to address the lack of a coordinated and integrated strategy to encouraging life sciences entrepreneurship by improving present skill sets and problem-solving abilities. And the last news that I have is from Hyderabad Metro Naeem. All the three Rajya Sabha candidates from Telangana have been declared elected unanimously. With no other candidates in the fray, the returning officer declared the results at the assembly premises in Hyderabad yesterday and handed over the certificates to the newly elected parliament members. Renuka Chaudhary will serve her sixth term as an MP, including four nominations to the Rajya Sabha and twice elected to the Lok Sabha. Youth Congress leader Anil Kumar Yadav will be making his debut in the parliament, while Ravi Chandra has been nominated to the Rajya Sabha for a second consecutive time following his nomination during by-elections held in 2022. And moving on to you for more news from the metro, let's listen in. What do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata from you, Naeem?
Ji, pehle Delhi ki baat kar lete hain. राजधानी के शांति पथ लॉन में ट्यूलिप उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में 7 रंगों के कई लाख ट्यूलिप फूलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन फूलों में नीदरलैंड्स और डच समेत कई अन्य देशों के ट्यूलिप फूल शामिल हैं। उत्सव में पहुंच रहे लोगों को सफेद, पीले, लाल, गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंग के ट्यूलिप खूब लुभा रहे हैं। पर्यटक फूलों के साथ तस्वीरें लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस उत्सव में फूल प्रेमियों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहां दर्शक ट्यूलिप फूलों को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा उत्सव में फोटोग्राफी प्रतियोगिता और लाइव संगीत का भी आयोजन किया गया है। उत्सव में आगंतुकों का प्रवेश निःशुल्क है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया है कि दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही सदन में पेश किया जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि आमतौर पर बजट मार्च महीने में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट को फरवरी में पेश किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि भूमिगत जलाशय की बूस्टर पंपिंग और स्टेशन की वार्षिक फ्लशिंग कार्यों के कारण आज राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके कारण बोडेला, शालीमार बाग, बीडब्ल्यू ब्लॉक, किशनगढ़, भाटी माइंस, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, बदरपुर, ओखला, बुराड़ी, बंगाली कॉलोनी समेत कई क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण करने की सलाह दी है। आपातकालीन स्थिति में जल विभाग के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। और अब मुंबई से कुछ खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क बिल्डिंग का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शैक्षणिक और आवासीय भवनों सहित 1120 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार वर्तमान और भावी पीढ़ी की आधुनिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करती है। आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क का निर्माण शिक्षा मंत्रालय के अनुदान से 100 करोड़ रुपए का उपयोग करके 225 करोड़ रुपए में किया गया था। रिसर्च पार्क एक 14 मंजिल की इमारत है, जिसमें 5 लाख वर्ग फुट निर्मित जगह है। आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क का उद्देश्य आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं और वास्तविक दुनिया की समस्या हल करने वालों के बीच प्रभावी दोतरफा बातचीत को बढ़ावा देना है। रिसर्च पार्क का दृष्टिकोण बड़ी कंपनियों, छोटे और मध्यम उद्यमों और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के साथ अनुसंधान एवं विकास और सहयोग को सक्षम करना है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पारंपरिक खेल महाकुंभ टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं का फाइनल मैच आज मुंबई के मलाट के मालवणी क्षेत्र के क्रीड़ा भारती ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 जनवरी से शहर में शुरू किए गए इस टूर्नामेंट की परिकल्पना मुंबई उपनगर के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने की थी। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मैचों के समापन के बाद शाम 5 बजे आयोजित किया जाना है। और ये आखिरी खबर कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल से 5 नए राज्यसभा सदस्य कल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस से ममता बाला ठाकुर, सागरिका घोष, सुष्मिता देव, नदीमुल हक और भाजपा से शमी भट्टाचार्य ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को उन्हें मंजूरी प्रमाण पत्र दे दिया है। और अब महानगरों के मौसम की बात कर ले रेनू
जी। बिल्कुल,
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सामान्य से 12 डिग्री कम रहते हुए 27.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में आज धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
And Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have mist in the morning. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius. And dear listeners, it is time for our special program Kaleidoscope, wherein we bring for you unique and out-of-the-box stories from around the world. Today's edition is scripted and narrated by Abhishek Mukhopadhyay.
Hello and welcome to a brand new edition of Kaleidoscope. Amidst the ongoing romantic milieu of Valentine's Week, where love fills the air, a sweet tale of almost too wonderful to be true love story has gone viral. This love tale took place at a busy Starbucks shop, giving a touch of sweetness to the season of love. Samantha, a young college student, juggling her academics and a part-time work as a barista at Starbucks, found herself drawn to a specific customer, Robbie Hildebrandt. Little did she know that the chance meeting would blossom into a timeless love story, eventually leading to a lifetime of togetherness. Samantha revealed that she was enamored by a regular customer, despite merely exchanging passing greetings. However, one day in 2016, Robbie struck up a discussion with her, inquiring about a Thanksgiving break, and that is where it all began. Seizing the opportunity, she discreetly scribbled a phone number on his holiday cappuccino cup with a Sharpie, hoping for a chance at love. "I was quite happy," Samantha from Ocean City, New Jersey, told Kennedy News, that her interaction with him gave her the confidence to approach him. "I typed my phone number with a Sharpie and he texted me that night. The rest is history," she explained. 5 years later, the pair married in a modest ceremony in front of family and friends. To celebrate the unorthodox meeting, they added a symbolic touch to the party by displaying a mason jar filled with coffee beans labeled the Perfect Blend, which served as a monument to the love story. Cristiano Ronaldo's beginnings in Santo Antonio, a mountainous neighborhood of Funchal, Madeira, could barely have been humbler. He was born on February 5, 1985, the youngest of four children, two girls, two boys. His mother, Maria Dolores de Santos Everio, was a cook, and his father, Jose Dennis Everio, a gardener. Together, they worked hard to provide the basic necessities for the young family. He was named Ronaldo after the then US President Ronald Reagan. He started playing soccer at an early age when he was just 8, nudged by his father. He was always running away from doing homework. A very popular student in school, Ronaldo was expelled at the age of 14 for throwing a chair at his teacher, who Ronaldo thought disrespected him. He then turned his entire attention to soccer and went on to become the world's greatest soccer player. But at the age of 15, Ronaldo was diagnosed with a racing heart. His condition was serious and would have made him let go of football, but a surgery saved him and he went back for his training. At the age of 17, Ronaldo played his first professional game for the Portuguese Super League. In 2003, for the first time, Manchester United paid such a young player £12 million as a signing amount. After this, there's been no looking back. Today, he has become one of the greatest footballers the game has ever known, a face recognized all over the world, which has come to universally signify self-belief, determination, resilience, power, and quality. Papillon is a novel written by Ohi Shahi-Ag, first published in France on 30th April 1969. Papillon is Shahi-Ag's nickname. The novel details Papillon's purported incarceration and subsequent escape from the French penal colony of French Guiana and covers a 14-year period between 1931 and 1945. The book was adapted for a Hollywood film of the same name in 1973, starring Steve McQueen and Dustin Hoffman, as well as another in 2017, starring Charlie Hunnam and Rami Malek. Determined to escape, Papillon forms an unlikely relationship with a frail but notorious forger, Louis Dega, Dustin Hoffman, who reluctantly joins in the attempt. Despite the harshness of solitary confinement, brutal conditions and constant threats of betrayal, Papillon leaves a desperate escape off the island. That's solved in this edition of Kaleidoscope. We look forward to hearing from you at duniarangbirangi10@gmail.com. Till then, keep listening to Akashvani FM Gold. Namaskar.
और अब वक्त हुआ है रेणु के हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि आज की तारीख 21 फरवरी को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं।
जी बिल्कुल,
21 फरवरी 1613 ईस्वी में माइकल रोमारोव रूस के जार बने और तभी से वहां रोमानोव वंश का शासन स्थापित हुआ। 1842 में आज के दिन अमरीका में सिलाई मशीन का पेटेंट कराया गया।
एंड ऑन दिस डे दैट इज 21st of February 1848 कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स पब्लिश द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन लंदन। In 1916, one of the World War's first deadliest and longest battles, the Battle of Verdun, began with a German offensive.
आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया।
The first general elections of India ended on this day in 1952. In 1959, the Press Club of India was founded in New Delhi. In 1995, American businessman and aviator Steve Fossett became the first person to make a solo flight across the Pacific Ocean in a balloon. And on this day, that is 21st of February 1996, Japanese encephalitis caused by... Yes.
इसी साल यानी कि 1996 की अगर हम बात करें तो हबल अंतरिक्ष द्वारा भेजे गए चित्रों की सहायता से ब्लैक होल के अस्तित्व का भी पता चला था।
इन 1997 द सोनिक मुल्तानी बैग्स नेशनल स्नूकर टाइटल इन मुंबई एंड इन 1999 द लाहौर डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
और 2010 में बैडमिंटन में भारत की पहली और दुनिया की सातवीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल ने दुनिया के नंबर 8 खिलाड़ी झो मी को पराजित किया था। और अब यकीनन हमारे श्रोताओं का भी इंतजार होगा, हमें भी इंतजार है।
आल्सो यस, वेटिंग फॉर दिस सेगमेंट ऑफ आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम, सो लेट्स बिगिन।
जी, पहले हम बात करते हैं पुण्यतिथि की। जोहराबाई अंबाले वाली एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायिका और भारतीय शास्त्रीय गायिका के रूप में। 1930 और 40 के दशक में वो बहुत ज्यादा सक्रिय रही अपने गायन के क्षेत्र में। जोहराबाई जो आज वर्तमान हरियाणा है वहां के अंबाला में पेशेवर गायकों के परिवार में जन्मी और पली बढ़ी और इसीलिए उनका जो उपनाम था वो अंबाले वाली पड़ गया। उन्होंने गुलाम हुसैन खान और उस्ताद नासिर हुसैन खान से अपना संगीत प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तानी संगीत के आगरा घराने से संगीत का प्रशिक्षण दिया गया। जोहराबाई अंबाले वाले ने 1950 में फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया। 1944 में गाया गया जोहराबाई अंबाले वाले का फिल्म रतन का एक हिट गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यकीनन आप इंजॉय करेंगे।
दिया भरमा के चले नहीं जाना, वो चले नहीं जाना, वो चले नहीं जाना। जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी, जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी। हाथिया के पैया पर जाऊंगी रोके कहूंगी, जाऊंगी रोके कहूंगी अपनिया मिला के जिया भरमा।
And today we are paying tributes to Charles Beaumont, who was an American author of speculative fiction, including short stories in the horror and science fiction subgenres. He is remembered as a writer of classic Twilight Zone episodes such as The Howling Man, Static, Miniature, Printer's Devil, and Number 12 Looks Just Like You. But also penned the screenplays for several films such as Seven Faces of Dr. Lau, The Intruder, and The Mask of the Red Death. Novelist Dean Koontz said Charles Beaumont was one of the seminal influences on writers of the fantastic and macabre. Beaumont is also the subject of the documentary Charles Beaumont, The Short Life of Twilight Zone's Magic Man by Jason V. Brock.
और आज ही अगर हम बात करें पुण्यतिथि की तो ओम प्रकाश की भी पुण्यतिथि आज ही है। 21 फरवरी 1998 को मुंबई में उनका निधन हुआ था। भारतीय सिनेमा जगत में प्रसिद्ध चरित्र और हास्य अभिनेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में पड़ोसन, जूली, दस लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी, नमक हलाल, प्यार किए जा वगैरह शामिल है। और उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी नौकर बीवी का। आपको ये बताते हुए अच्छा सा लग रहा है कि 1937 में ओम प्रकाश ने ऑल इंडिया रेडियो सीलोन में 25 रूपये वेतन में भी नौकरी की थी, यानी कि हमारी आकाशवाणी में भी वो काम कर चुके हैं जी। उनका फतेह दिन जो कार्यक्रम था वो बहुत पसंद किया गया था और उसके बाद फिल्मों में तो उन्होंने हर तरह का ही किरदार निभाया और अपना नाम अमर कर दिया। ओम प्रकाश पर फिल्माए गए कुछ गीत भी हमें फिल्म इंडस्ट्री में सुनने को और देखने को मिलते हैं।
पान का इक्का कहीं जो कर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। बालीगंज की झील पे बाबू आए रूप के दास, झील किनारे बढ़ती जाए मतवालों की प्यास। आयो कहाँ से घन शाम, देना बिताई किस धाम हाराम। आयो कहाँ से घन।
And today we are also paying tributes to Nutan Samrat Behl, known as Nutan, who was an Indian actress who worked in Hindi films. In a career spanning nearly four decades, she appeared in more than 80 films that ranged in genre from urban romances to socio-realistic dramas. In 1974, Nutan received the Padma Shri, India's fourth highest civilian award.
उन अभिनेत्रियों में से रही नूतन जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अभिनेत्रियां जो हैं वो सिर्फ शोपीस नहीं है बल्कि अभिनय करके भी वो अपनी पहचान बना सकती हैं। सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्में हैं जिसमें हम नूतन का उत्कृष्ट अभिनय देख सकते हैं। फरमाते हैं वो देख के हालत मेरी क्यों, तुम आसान समस्या थे मोहब्बत मेरी। जी ये जो शेर है आप समझ ही गए होंगे मशहूर शायर मुंशी अमीर अहमद मीनाई का है जिनकी आज जयंती है। उर्दू अदब के मकबूल और बेहतरीन शायरों में अमीर मीनाई का नाम शुमार किया जाता है। अमीर मीनाई ने 22 किताबें लिखी जिनमें चार गजल संग्रह हैं। अमीर मीनाई की शिक्षा लखनऊ के प्राथमिक शिक्षण संस्थान फरंगी महल में हुई थी। दाग दहलवी के समकालीन अमीर मीनाई अपनी एक उस गजल के माध्यम से बेहद मशहूर है जो फिल्मों में भी इस्तेमाल की गई है और नॉन फिल्मी भी है।
निकलता आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता।
आज ही जयंती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हिंदी के छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से निराला का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वो एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे और उन्होंने कई रेखा चित्र भी बनाए। उनका व्यक्तित्व बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ और वो उनकी लेखन में भी साफ देखने को मिलता है। छंद, भाषा शैली, भाव संबंधी दृष्टियों से उन्होंने नवीन काव्य को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज ही अगर हम बात करें तो रानी चेन्नम्मा की पुण्यतिथि है जो दक्षिण भारत के कर्नाटक में वही जगह रखती हैं जो हमारे यहां उत्तर भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने हथियार नहीं डाले और अपने राज्य को कित्तूर को बचाने के लिए जी तोड़ लड़ी और एक वक्त आया जब अंग्रेज उन्होंने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, उनके सहयोगों को फांसी दे दी, लेकिन यहीं 21 फरवरी 1829 को उनका देहांत हो गया।
एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एलन सिडनी पैट्रिक रिकमैन हु वाज एन इंग्लिश actor and director. He is known for his distinctive deep language voice. He trained at the Royal Academy of Dramatic Art in London. Rickman's first role came when he was cast as German terrorist leader Hans Gruber in Die Hard. And he has also worked in Truly, Madly, Deeply, Sense and Sensibility and the Harry Potter series.
और अब क्या, अब जाने का वक्त हो गया है, तो अपने श्रोताओं से हम अनुमति लेते हैं। नईम अख्तर और रेणु कटारिया को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। तो अभी के लिए इतना ही,
नमस्कार।